भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 34 3.34 इंद्रियस्येन्द्रियस्याते रागद्वेषो व्यवस्थितौ प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है।
ओम ज्ञान ज्ञानस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वकदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपादकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रतं सर्वानुभवान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावरूपं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सर्वललिता श्रीशतान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च उपासिन्दुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीपाद इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोन वशम आगच्छन्तौ हि अस्य परिपंथिनो। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार में बाधक है। इसके पहले के श्लोक में हमने क्या समझा था, 3.33 में हमने दो प्रमुख विषय की चर्चा की थी, क्या स्वभाव और सिद्धांत। बहुत प्रमुख बातें हैं। लोग अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, सिद्धांत के अनुसार कार्य नहीं करते। स्वभाव के अनुसार दो प्रकार से कार्य किए कर्म किए जा सकते हैं, एक तो स्वभाव के अनुसार किए जा सकते हैं और दूसरे सिद्धांत के अनुसार किए जा सकते हैं। और ज्यादातर संसार में सभी लोग अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, और स्वभाव अर्थात राग और द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद और नापसंद, इसके ही आधार पे कर्म करते हैं। राग द्वेष के आधार पे कर्म करते हैं, इसलिए कर्म बंधन में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। पिछले श्लोक में हमने समझने की प्रयास किए थे, सिद्धांत के आधार पर जो कर्म करते हैं, भगवान ने इसके पहले भी कहा है, दूसरे अध्याय में भी कहा है, तीसरे अध्याय में पहले कहा है, जो सिद्धांत के आधार पर करते हैं अर्थात मेरे अनुसार, अर्थात भगवान कहते मेरे आज्ञा के अनुसार जो कर्म करते हैं वो कर्म बंधन में नहीं फंसते। अर्थात सिद्धांत के आधार पर जो कर्म करते हैं, शास्त्र क्या, सिद्धांत क्या है, और इस सिद्धांत शास्त्र के अनुसार कर्म करना, शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र का सार क्या है, भगवान को तत्व से समझना, समझाते हैं भगवान को तत्व से शास्त्र, शास्त्र क्या करते हैं, भगवान को ही तो समझाते हैं, शास्त्र क्या करते हैं, समस्त शास्त्र भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, सारे शास्त्र भगवान का गुणगान करते हैं, उनके नाम रूप गुण और लीलाओं का वर्णन करते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से वो समझाते हैं जीवों को, नाम रूप गुण लीला, सार क्या है, इन सब का सार क्या है, सार ये है कि भगवान को कभी नहीं भूलना। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ये है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, अर्थात सिद्धांत यह है कि कोई भी कर्म करते हो तो भगवान का स्मरण करके कर्म करो, ये सिद्धांत है, इसमें कर्म नहीं करने की कई बात कही है, कर्म करना ही है परंतु उसके बंधन में फंसना नहीं है, इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, सिद्धांत के आधार पर कर्म करो, और सिद्धांत है भगवान का नित्य स्मरण, तो ऐसा स्मरण होने से हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, देखिए इस श्लोक में जैसे 33 में भगवान ने कहा था कि समस्त प्राणी अपने स्वभाव के वश में कर्म करते हैं, ये भगवान ने दुख प्रकट किया था। भगवान कहते क्या करें, स्वभाव और सिद्धांत के आधार पर कर्म करना चाहिए, परंतु समस्त प्राणी स्वभाव के वश में कर्म करते हैं। मुझे अच्छा लगा तो मैं सत्संग में जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा। अच्छा स्वभाव क्या है मेरा, अच्छा लगना और बुरा लगना, ये मेरा स्वभाव है। सिद्धांत क्या है, इन एनी केस कोई भी स्थिति में, शीतोष्ण सुख दुख दाह, शीत उष्ण सुख दुख, कोई भी परिस्थिति हो, शीत ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, दुख हो, दाह हो, सुख हो, कोई भी परिस्थिति में सत्संग में जाना चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। परंतु स्वभाव क्या कहता है, अच्छा लगा तो जाओ, अच्छा नहीं लगा तो नहीं जाओ। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो स्वभाव के वश में आकर कर्म करते हैं, इस भौतिक जगत के साधारण जीव, समस्त प्राणी इस प्रकार से स्वभाव के वश में फंस जाते हैं और उसी के अनुसार कर्म करते हैं। अब इस श्लोक में फिर प्रश्न तो आएगा ना, इसके ऊपर प्रश्न यह आ सकता है कि जब समस्त प्राणी अपने स्वभाव के आधार पर कर्म कर रहे हैं, स्वभाव के आधार पर कर्म कर रहे हैं, ये स्वभाव है, इनबिल्ट इनबिल्ट है, स्वभाव के आधार पर यदि सब प्राणी कर्म कर रहे हैं तो ये प्राणी कर्म बंधन में कैसे फंस सकते हैं, ये तो स्वभाव है ना। जैसे शक्कर का स्वभाव मीठा है, मिठास है ना शक्कर का स्वभाव, वो मिठास ही तो देगी, वो शक्कर खाएगी तो तीखा लगेगा कभी, देखिए एक आदमी शक्कर का मुड़ा हो गया और आपने खा लिया और तीखी लग गई, ऐसा होगा, वो तो स्वभाव है। तो स्वभाव भगवान यह गए हैं 33 में, इसलिए प्रश्न मन में ये हो सकता है कि स्वभाव ही यदि इस प्रकार से कर्म स्वभाव से ही हम कर्म करते हैं, स्वभाव के आधार पर ही हम कर्म करते हैं, तो फिर उस कर्म के बंधन में कैसे फंस सकते हैं? ये तो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, तो मूलभूत स्वभाव है, मूल स्वभाव है, किसी से लिया हुआ नहीं, मूल स्वभाव है। तो स्वभाव यदि ऐसा है तो कैसे कर्म बंधन में या पाप के बंधन में फंस सकते हैं, प्रश्न मन में आ सकता है, किस प्रकार ऐसे हो सकता है। इसके उत्तर में पहले भगवान ने कहा स्वभाव या सिद्धांत, और समस्त प्राणी स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, तो स्वभाव के अनुसार कर्म करते तो उसमें कौन सा पाप है, उसमें क्या पाप है? शेर अपने स्वभाव के अनुसार खाता है, बकरी अपने स्वभाव के अनुसार खाती है, मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अनेक प्रकार से कर्म करते हैं, तो पाप क्या है? ये प्रश्न मन में आ सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जीव को कर्म बंधन उस समय तक प्राप्त होता है जिस समय तक वो जीव विषय आसक्त रहकर कर्म करता है। व्यक्ति को बंधन, कर्म का बंधन तब तक लगा रहता है जब तक वो आसक्ति के साथ वो कर्म करता है, प्रचंड आसक्ति के साथ, उस विषय के प्रति आसक्ति। जैसे भौरा है, ये क्या करता है, फूलों से मध निकालता है, भौरा ही कहते हैं उसे, वो फूलों से मध निकालता है, कितना अच्छा कर्म है उसका, कुछ बुरा है? थोड़ा मध चखता भी है, बाकी का मध जमा करता है लोगों को, लोगों के कल्याण के लिए, अच्छा काम है, नहीं क्या बुरा है? मध भी अच्छा टेस्टी लगता है तो उसको चखता है, उसका इंद्रिय तृप्ति होता है, स्वाद विषय तृप्त हो जाता है, कोई तकलीफ है? कितना अच्छा कार्य है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है? कोई समस्या, कितना अच्छा कर्म है, इतना अच्छा है। ये कर्म करेगा तो बंधन में कैसे फंस सकता है? नहीं फंसेगा ना। परंतु क्या होता है, ये भवरा उस मद का जो स्वाद है, विषय क्या है, स्वाद, ये मकरंद अर्थात उस पुष्प का जो मद है, वो मद का जो स्वाद है, वो स्वाद इस विषय के प्रति इतना सख्त हो जाता है, इतना सख्त हो जाता है, वो कमल पुष्प पे बैठ के मध चखते रहता है, चखते रहता है, चखते रहता है, चखते रहता है, सूर्यास्त तो हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है, और फूल बंद हो जाता, मृत्यु हो जाती, इतनी आसक्ति कि वो कर्म बंधन में फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है। देखिए मध एकत्रित करना कोई प्रॉब्लम, स्वभाव क्या है भौरे का, मध एकत्रित करना, इस स्वभाव के अनुसार वो कर्म करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं करे, अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम कब शुरू हो जाती, समस्या कब शुरू हो जाती है, जब उस विषय स्वाद इस विषय के प्रति वो आसक्त हो जाता है, उस समय समस्या खड़ी हो जाती है। हमारे स्वभाव के अनुसार हम कर्म करते हैं, राग द्वेष के आधार पर हम कर्म करते हैं, यही कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तब होती है, समस्या तब होती है जब हम उन कर्मों के जो विषय है उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, तब समस्या खड़ी हो जाती है, तब हम कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इसलिए इस श्लोक में बहुत सुंदर भगवान ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन, कह रहे इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, प्रत्येक इंद्रिय में अपने विषय के प्रति राग द्वेष रहता है, प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय के प्रति राग द्वेष रहता है। कैसे, उदाहरण समझ लीजिए जीवा, जीव, जीव का विषय क्या है? रस, स्वाद, रस, रसपान करती है जीव। जीवा का विषय क्या है? रस। अब भगवान क्या कह रहे हैं? इंद्रियस्थ इंद्रियस्थ अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय में अपने विषय के प्रति राग द्वेष अपने आप है, रहता ही है, इनबिल्ट फैसिलिटी है। जैसे जीवा है, इस जीवा नामक इंद्रिय में स्वाद रूपी राग द्वेष है। राग अर्थात क्या? आसक्ति, अच्छा लगना, लाइक्स। द्वेष अर्थात क्या? डिसलाइक्स, अच्छा नहीं लगना। तो ये जीवा इस इंद्रिय को स्वाद रूपी विषय के प्रति राग और द्वेष है। उदाहरण देखिए, रसगुल्ला मिल गया, क्या होगा? चटक मटक आवाज आएगा। खाते खाते इतना उस जीवा पे, उस रसगुल्ले का जो प्रभाव है वो इतना प्रभाव रहेगा, अच्छा प्रभाव, प्रीति, प्रिय, लाइक्स, कि रस ना रस पहले लगेगा जीवा से, क्योंकि प्रिय विषय है। सो जीवा में इनबिल्ट है ये क्या? राग और द्वेष, कुछ विषयों के प्रति राग, कुछ विषयों के प्रति द्वेष। राग अर्थात आसक्ति, रसगुल्ला मिल गया तो वाह वाह वाह, कितने रसगुल्ले खा जाएंगे, एक दो चार आठ दस बारह खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। हम एक बार एक विवाह विवाह में गए, हमारे पास में दो व्यक्ति बैठे थे, उनके दोनों में शरीयत लग गई कौन ज्यादा खा रहे रसगुल्ला, बताइए ऐसी भी शरीयत लगती है। अरे ये जीवा रूपी, ये जीवा इंद्रिय जो है, विषय विषय जो है उसका रस, इसके प्रति कितना राग है उसको देखिए, उस रसगुल्ले के प्रति राग कितना है, कि राग अर्थात आसक्ति, प्रेम। ये रसगुल्ला कितना प्रिय है देखिए, कि उसमें शरीर लगा देते कि कौन कितना ज्यादा से ज्यादा खाएगा। तो एक व्यक्ति ने 42 रसगुल्ले खाए और उसको हराने के लिए दूसरा व्यक्ति नींबू खा खा के रसगुल्ले खा रहा था। तो उसने 43 खाए और फिर भी उसका इच्छा मन नहीं भरा, पेट भर गया था, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, पेट भर गया मन नहीं भरा, क्यों? क्योंकि राग है, उस रसगुल्ला ये विषय के प्रति राग है, इसलिए वो राग के कारण आसक्त है, अटैच है, वेरी मच अटैच। वही करेला दिया तो कितना करेला खाए, करेला परोसा थाली में तो अरे अरे नहीं 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 चाहिए हमको, एनर्जी है, ये है वो है, हम खाते नहीं है, द्वेष। अब ये राग और द्वेष को करेले का क्या विचारे का गुना है? हमारे अंदर जो राग और जो द्वेष उत्पन्न हुआ है करेले के प्रति, उसमें करेले का कोई दोष है? उस विषय उस वस्तु का कोई दोष है? क्योंकि वो द्वेष और वो राग हमारे अंदर ही है, हमारे ही अंदर वो है, वही करेला किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, उसको मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, 10-12 करेले खा जाएगा, एक रसगुल्ला नहीं खाएगा। उस व्यक्ति को करेले के प्रति राग है, रसगुल्ले के प्रति द्वेष है। तो राग और द्वेष रसगुल्ले में और करेले में है कि हमारे में? राग और द्वेष हमारी इनबिल्ट है हमारे अंदर, इसलिए भगवान ने क्या किया है उसका ऑलरेडी अरेंजमेंट कर दिया है, ऐसे बोल रहे भगवान, व्यवस्थित हो, व्यवस्था कर दी है, ऑलरेडी अरेंजमेंट हो गई है, भगवान। भगवान इस प्रकृति इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो, व्यवस्थित कर दिया है इसको एकदम अच्छे से। हमारे ही अंदर राग द्वेष व्यवस्थित, इस शब्द का अर्थ है व्यवस्था करना, व्यवस्थित हो शब्द का अर्थ क्या है, व्यवस्था करना। तो ये प्रश्न मन में आना चाहिए कि किसकी व्यवस्था कर दी है भगवान ने। क्या भगवान कह रहे ना, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, व्यवस्थितो व्यवस्थितो शब्द का अर्थ होता है दो वस्तुओं की व्यवस्था करना, वस्तुओं की व्यवस्था करना। प्रश्न ये आना चाहिए इसमें क्या व्यवस्था की है भगवान ने, क्या व्यवस्था की गई है। तो इस श्लोक में पहले शब्द क्या है, राग द्वेषो व्यवस्थितो। ऑलरेडी राग और द्वेष की इंद्रियों में ही व्यवस्था कर दी गई है। ये कदापि न सोचे कि हमको द्वेष हो रहा है उस वस्तु के कारण द्वेष उत्पन्न हो रहा है, उसका अरेंजमेंट तो अंदर ही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। तो प्रश्न यह होता है कि ये दो वस्तुओं की व्यवस्था कहां की गई है और कब की गई है। राग और द्वेष ये दो वस्तुओं की व्यवस्था ऑलरेडी हमारे अंदर इनबिल्ट कर दी गई है, लेकिन कब की है कहां की है, कब की है कहां की है प्रश्न मन में आना चाहिए। तो भगवान उत्तर में कहते हैं ये जो दो वस्तुएं हैं, पहले तो ये दो वस्तुएं राग और द्वेष अर्थात आसक्ति और अनासक्ति, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये दो वस्तुओं की व्यवस्था की गई है। कहां की गई है, इंद्रियस्य इंद्रियस्य, दो बार कहा है, श्लोक पढ़िए ठीक से। प्रत्येक इंद्रिय में इन दोनों की व्यवस्था की गई है, कहां की गई है, इंद्रियों में ही यह व्यवस्था की गई है। ऐसे बचेंगे बताइए, बचने का कोई रास्ता है, इंद्रियों में ही व्यवस्था की गई है, इनबिल्ट फैसिलिटी दे दी गई है कि आप आसक्त होते रहो, विषय आसक्त होते रहो। यहां उदाहरण हम यह समझ सकते हैं कि श्रोत्र अर्थात कान, कान है ना, कान, कान का विषय क्या है, सुनता है शब्द, कान का विषय क्या है, शब्द है ध्वनि, शब्द अर्थात ध्वनि कह सकते हैं, कान का विषय ध्वनि है। अब इस कान को मधुर ध्वनि प्रिय लगता है ना, लगता है बहुत ही अच्छा सुंदर संगीत चल रहा हो तो कितना देर बैठेंगे आप, अच्छा म्यूजिक चल रहा है बढ़िया, ऑर्केस्ट्रा चल रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा का साइन समय कितना होता है पता है आप सबको, कितना होता है, 9 बजे शुरू होता है तो 2 बजे तक चलता रहते हैं, ऐसे ऑर्केस्ट्रा होते हैं। तभी भी लोग क्या करते हैं, बैठे ही रहते हैं। संगीत मधुर होता है, मधुर संगीत के प्रति हमारे कर्ण हमारे कान आसक्त रहते हैं, राग रहता है, और कर्कश ध्वनि के प्रति द्वेष रहता है। अर्थात राग और द्वेष इन दोनों की व्यवस्था हमारे कान में ऑलरेडी कर दी गई है, लेकिन इसमें करती है ना ऑलरेडी व्यवस्था इसकी, अच्छा ध्वनि रहेगा तो अच्छे से सुनेगा, कान में सॉफ्टवेयर डाल दिया है, कर्कश ध्वनि रहेगा तुरंत वहां से भाग जाएगा, या कान में कुछ कपास डाल देगा या वहीं पे सो जाने का, जैसे कि नॉर्मली सत्संग में होता है नींद आने लगती है। तो क्यों नींद आती है, क्यों नींद आने लगती है, क्योंकि जो ध्वनि है वो ध्वनि डिस्टर्ब करते रहता है, कर्कश लगने लगता है मन को, इसलिए क्या सोचते हैं हम, चलो सो जाए, ये क्या चल रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों व्यवस्थाएं ध्वनि के प्रति, दोनों व्यवस्थाएं हमारे कान में है कि नहीं, कान में इनबिल्ट ऐसा फैसिलिटी दे दिया गया है, और म्यूजिक में कोई दोष नहीं है, म्यूजिक में कोई दोष नहीं, एकदम बहुत ही सुंदर भक्ति गीत चल रहे तो हम सब एकदम बड़े प्रसन्न रहेंगे, कोई कोई दूसरे नास्तिक लोग बैठे तो वही म्यूजिक उनको नींद आ जाएगी, वही कोई डिस्कोटेक चल रहा है तो हम लोग वहां से भाग जाएंगे, और कोई लोग वहां पे नाचते रहेंगे, तो म्यूजिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या है हमारे कान में।
तो कान ये जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय ध्वनि इस विषय के प्रति राग और द्वेष में बाधित हो जाता है,
ध्वनि इस विषय के प्रति,
और त्वचा जो होती है स्किन, त्वचा शीतल और कोमल स्पर्श से प्रसन्न रहती है, उसको आनंद होता है, और कठोर और एकदम उष्ण झटका दिया तो, और किसी ने एकदम पकड़ लिया एकदम कठोरता से तो द्वेष। अप्रिय लगता है, इसी प्रकार से घ्राण नासिका, नाक का क्या है विषय, गंध, सुगंध प्रिय है और दुर्गंध अप्रिय, राग और द्वेष, नाक भी राग द्वेष करता है, कान भी राग द्वेष करता है, आंख भी राग द्वेष करता है, त्वचा भी राग द्वेष करती है, जीवा भी स्वादिष्ट भोजन प्रिय लगता है, स्वादिष्ट भोजन है पंच पकवान का है तो बहुत भीड़ हो जाएगी, खिचड़ी प्रसाद है तो रोज ही तो लेते बाद में लेंगे। इस प्रकार से जीवा भी राग द्वेष प्रकट कर, अर्थात हमारे सारे इंद्रिया राग द्वेष के चक्कर में फंसी हुई है
कि बराबर है, इसमें किसी कोई ऑब्जेक्शन है, तो ये कह सकता है नहीं मेरी इंद्रिया एकदम बेस्ट है कोई नहीं कह सकता, इंद्रिया राग और द्वेष के चपेट में फंसी हुई है। देखिए भगवान कितना सुंदर समझा रहे हैं अर्जुन को, धीरे धीरे कैसे उस सब्जेक्ट उस विषय पे आ रहे हैं। विषय क्या है, विषय ये है कि अर्जुन भगवान को कह रहे कि मैं युद्ध क्यों करूं, ये पाप में क्यों करूं, मैं कर्म बंधन में क्यों फंसूं, ऐसे कर्म मुझसे क्यों करवा रहे हो जिससे मैं फंस जाऊं, जिससे मुझे पाप लग जाएगा, ये विषय चल रहा है, आपको याद है स्मरण में विषय ये चल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान समझा रहे हैं कि कर्म क्या है, कर्म योग क्या है और कर्म बंधन क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस अध्याय का नाम तो भी कम से कम स्मरण में रहे जब तक अध्याय चल रहा है, कर्म योग इसके अनुसार भगवान समझा रहे अर्जुन को भी कर्म क्या है, कर्म बंधन क्या है, कर्म लोभ क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कर्म योग होना चाहिए, कैसे होना चाहिए वो बता रहे हैं, क्या नहीं होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में क्या बताया, आगे दूसरी पंक्ति क्या है, दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं तयोन वशमा गच्छतो यस्य परिपंथिनो, वो कह रहे हैं दूसरे अध्याय में राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, अर्थात क्या नहीं करना चाहिए ये बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में, राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अब हमारी समस्या अभी तक हमने पढ़ी है, हमारे तो यही तो मूल समस्या है, भगवान आगे की पंक्ति में कह रहे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अब हमारी सारे की सारी इंद्रियां तो है ना, समस्या है कि नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान की व्यवस्था से आध्यात्मिक जगत में सभी विषय इंद्रियों को तुल्य लगने लगते हैं। आध्यात्मिक जगत की क्या विशेषता है, आध्यात्मिक जगत में जितने भी विषय हैं, वो सारे के सारे विषय इंद्रियों को प्रिय लगते हैं, अर्थात वहां पे द्वेष वाला एक भी विषय नहीं है। अब यहाँ पे हम थोड़ी चर्चा ये कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में फर्क क्या है। तो आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, अरे आध्यात्मिक जगत में सब प्रिय ही प्रिय है, और प्रिय तो कुछ है ही नहीं, द्वेष युक्त तो कुछ है ही नहीं आध्यात्मिक जगत। दशम स्कंद में वृंदावन धाम का महिमा है, मथुरा महात्म्य में भी है, कई ग्रंथों में वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन किया जाता है। वहां वृंदावन धाम में जो भी ध्वनि निकलती है मुख से, वो प्रत्येक ध्वनि गीत बन जाता है। तो कोई भी ध्वनि होने दीजिए, मानो गधा भी चिल्ला रहा हो तो वो भी मधुर ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। वृंदावन धाम की ऐसी व्यवस्था है कि वहां पे सारी घटनाएं प्रिय घटनाएं होती है, वहां कोई द्वेष का कुछ है ही नहीं, सारी ध्वनि प्रत्येक शब्द हमारे मुख से जो निकलता है वो गायन करता है, वो गीत है। तो द्वेष कहां से होगा, ये वृंदावन का महत्व है। इतना ही नहीं, वहां के जो भ्रमर है वो भ्रमर गुंजन करते उसको भी गीत का रूप मिल जाता है, वो भी गीत में परिवर्तित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में है भ्रमर गीत, भ्रमर का गुंजन पता एक घंटा आपके कान से ऐसा कोई करता रहे तो आप इसको गीत कहेंगे, परंतु वृंदावन में यदि इस भौतिक स्तर पे ऐसा कोई भ्रमण करता है तो हमारे मन में क्या उत्पन्न होगा, द्वेष होगा ना, राग होगा कि द्वेष होगा, तुरंत भ्रमण को हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। परंतु यह भ्रमण जब वृंदावन में हूं करता है तो वो गीत गाता है, और जब वो यह गीत वृंदावन में गाता है तो प्रत्येक जीव उस गीत को, उस गीत का आनंद लेते, उस मधुर गीत का, उस मधुर ध्वनि का आनंद लेते हैं। यह वृंदावन धाम की आध्यात्मिक जगत की विशेषता है। वहां भ्रमर भी अत्यंत मधुर स्वर में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करता है, आध्यात्मिक जगत की विशेषता है, इसलिए वहां पे द्वेष नहीं है, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का गुणगान है। और वहां पे इस प्रकार से नित्य वायु चलती रहती है, हवा चलती है नित्य, वसंत ऋतु नित्य इस प्रकार से वायु चलते रहती हो कि कोई भी दिन, कोई भी ऋतु में, कोई भी महीने में, कोई भी समय यदि आप जाते हैं तो शरीर को, त्वचा को वो शीतल और कोमल स्पर्श करती है। क्यों
ऐसा क्यों होता है?
वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में वो वायु स्पर्श जब करती है तो हमको शीतलता और कोमलता का अनुभव होता है, दिव्यत्व का अनुभव होता है। क्योंकि वो वायु वहां भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श करके वही घूमते रहते हैं, उसको धाम छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती, वही भगवान को स्पर्श करती है, वही घूमती है, वही स्पर्श करती है, वही घूमती है। अभी दिसंबर मास में सब लोग चल रहे हैं, उनको उसका अनुभव आएगा। तो वो वायु इस प्रकार से शरीर को स्पर्श करती है तो व्यक्ति को राग उत्पन्न होता है। फिर वो वायु कितने भी स्पीड से आने दीजिए, कैसे भी आने दीजिए, परंतु होता क्या है हृदय में उसके प्रति आनंद का अनुभव होता है आध्यात्मिक जगत। क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा करके आई वो वायु, इसलिए द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। देखिए बहुत ध्यान से सुन समझिए, बहुत महत्व का श्लोक है। तीसरा हम देखते हैं वहां के वृक्ष, फल, फूल, नदी, पत्थर, शिलाएं सब यदि आप देखें तो इतना सुंदर रूप लगता है कि हमारे नेत्रों को आनंद देते। क्यों? क्योंकि वहां के वृक्ष, पुष्प, फल, फूल, नदी, जल, पत्थर सब कोई भगवान की लीलाओं में नित्य रहते हैं। भगवान कोई लीला करते ये लोग उनके साथ रहते ही रहते, भगवान की लीला में ये लोग नित्य कुछ ना कुछ सेवा करते रहते, सेवाधारी। मान लो भगवान को अचानक कुछ फल खाने की इच्छा हुई, आम खाने की इच्छा हुई, बहुत सुंदर आम का वृक्ष देखा, भगवान को इच्छा हुई, वो आम को भी लगा कि अरे भगवान को इच्छा हुई क्या किया जाए, तुरंत वो आम क्या करता है, प्रयास करता है नीचे झुकने, सारे के सारे आम नीचे झुकने का प्रयास करते, वो पूरे पेड़ को नीचे झुका देते, भगवान तुरंत देखेगा आम तोड़ गए। देखिए कितनी बड़ी सेवा करते भगवान। फूल, भगवान की इच्छा हुआ कितना सुंदर सुगंध है, जुई वेली लताओं का कितना सुंदर सुगंध है, जैसे ही भगवान वृक्ष के नीचे खड़े सारे फूल उनके ऊपर गिर जाते, कैसी नित्य सेवा में। राधा रानी वहां से जा रहे, सारे वृक्ष राधा और कृष्ण युगल रूप को प्रणाम करते झुक के, पूरे झुक जाते, कितनी सुंदरता है देखी। तो ये सारे वहां के सारे वृक्ष, सारे पुष्प, फल, फूल, नदी, पत्थर सब बहुत सुंदर रूप है। ऐसे रूप को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न होता है। मान लो हमको कोई ऐसा रूप दिख गया जो हमको कतई पसंद नहीं, और सुबह सुबह उठते से दिख गए, क्या होगा? हमने द्वेष उत्पन्न, या हमको जो पसंद नहीं है वो रूप दिख गया तो हमको द्वेष उत्पन्न होगा। परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता नहीं, क्योंकि वहां की प्रकृति भी निर्जीव वस्तुओं का भी सुंदर रूप है। क्यों? क्योंकि तो उनके पास द्वेष नहीं, कृष्ण की सेवा है। उसी प्रकार से महत्व की तो बात भूल ही गए हैं, भोजन वहां का भोजन भी बहुत प्रिय लगता है आपको, भी जाइए वो ब्रजवासी आप तो ऋषिकोश परिक्रमा पे जाते हैं, कोई गांव आते हैं तो ब्रजवासी भागते भागते आते हैं, अरे कोई आए आए तीर्थयात्री आए, और क्या करते हैं तुरंत अपने घर में जो भी रोटी ज्वार की रोटी सब्जी और छाछ जो भी का भर भर के लाते बोलते लो खाओ खाओ देते हैं ना सब्जी वाला अनुभव होगा जो गए होंगे, फिर हमारे साथ बैठते हैं चर्चा करते हैं कुछ बताते हैं कथा, और बड़े प्रेम से सब लोग वो सूखी रोटी और उसके साथ चटनी हो तो चटनी नहीं तो कुछ भी नहीं है छाछ होता है सूखी रोटी और छाछ इतने प्रेम से खाते हैं कि जीवा तृप्त तो हो जाती है, कोई द्वेष नहीं। मुंबई में खाओ कितना द्वेष कितना घर में झगड़ा होगा तो वृंदावन धाम आध्यात्मिक जगत में द्वेष नहीं है, जीवा के स्वार्थ के द्वेष द्वेष इज एकदम अब्सेंट। इसी प्रकार से वहां पे अनेक प्रकार के फूलों का सुगंध है, अनेक प्रकार के फूलों का सुगंध है, कुछ ऐसे विपरीत फूल है लेकिन फिर भी उनका सुगंध आता है, फिर भी वो सुगंधित लगते हैं, कांटे वाले फल है कांटे वाले फूल है लेकिन फिर भी वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहां द्वेष है। अब देखिए इतनी सब बातें पांचों इंद्रियों के आधारित बातें हमने की है जो आध्यात्मिक जगत में होती है, तो प्रश्न ये होता है कि आध्यात्मिक जगत में तो द्वेष है ही नहीं ना, तो नेचुरली वहां सब कुछ जो कुछ सब है वो तो प्रिय ही लगना है, क्योंकि वहां तो आध्यात्मिक जगत में तो द्वेष होता ही नहीं है ना, द्वेष तो यही भी होता है, द्वेष तो मटेरियल वर्ल्ड का लक्षण है ना, द्वेष तो भौतिक संसार में होता है ना, तो यही पे राग और द्वेष होगा ना, आध्यात्मिक जगत में तो होता ही नहीं है। तो इसके ऊपर यह फिर प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, भौतिक संसार में हमारे साधारण जीवों के पास द्वेष क्यों है और वही आध्यात्मिक संसार में आध्यात्मिक जगत में द्वेष क्यों नहीं है। अभी आप ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये यहाँ पे इनबिल्ट लेकिन ऐसी है इनबिल्ट वहां गए तो द्वेष द्वेष नहीं रहता है यहाँ पे रहता है ऐसे ही ले सकते वही तो पूछ रहे ना यहाँ भोग की प्रवृत्ति है यही प्रवृत्ति के साथ वहां जाते हैं यहाँ जो सूखी रोटी और छाछ खाने को दो तो जमता नहीं है वहां खा लेते हैं नहीं यहाँ पे भी प्रसाद में मान लो रोज खिचड़ी के बदले हम सूखी रोटी लाए क्यों है क्योंकि हमें एक बात पांचों बार में एक बार बहुत श्रेष्ठ देखे कहा वायु भी है तो कृष्ण के चरणों से तो कृष्ण कॉन्शियस है वहां प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस है वहां प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण से कुछ ना कुछ गहरा संबंध बनाया हुआ है इसलिए द्वेष नहीं है। इवन सारी इंद्रिया हमारी पंचेंद्रिया ठंडी के दिनों में भी हम वृंदावन जाते हैं इतनी गहरी ठंडी रहती है कि बहुत ज्यादा ठंडी लेकिन क्या उत्साह होता है क्या भक्ति का अनुभव होता है और वही आप राजस्थान जाइए जम्मू कश्मीर जाइए दिल्ली जाइए ठंडी के दिनों में हीटर लगाएंगे स्वेटर पहनेंगे पूरा सब कहीं बाहर नहीं निकलेंगे क्या है सब बेकार इस प्रकार से द्वेष प्रकट करेंगे परंतु वृंदावन में वही शीतल हवा वही मौसम ठंडा वो हमको उत्साह दिलाता है क्यों क्योंकि वहां प्रत्येक ऋतु वायु प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक विषय कृष्णमय तो इसका अर्थ यह होता है जब कोई व्यक्ति
कृष्णमय होता है या कृष्ण से गहरा संबंध बनाए हुए होता है या कृष्ण के इस कृष्ण को नित्य स्मरण करता है उसके पास बराबर है, ये सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है। प्रत्येक विषय के प्रति राग ही है, विषय अगर प्रिय तो ही प्रिय, क्योंकि कृष्ण से संबंधित सबको देख रहा है, क्या करता है, कृष्ण से संबंधित सबको देखता है। यहां अर्जुन क्या कर रहे हैं, ये सारे परिस्थितियों को किसके संबंध में देख रहे हैं, अपने स्वयं के संबंध में देख रहे हैं, इसलिए राग और द्वेष उत्पन्न हुआ है। और इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, राग और द्वेष से प्रभावित मत, अर्थात ये स्वभाव है परंतु इससे प्रभावित मत हो। कब नहीं हम इससे प्रभावित, जब कृष्ण से संबंध प्रस्थापित होगा, गहरा संबंध, कृष्ण के संबंध में सब कुछ देखेंगे। जब हम अपने ही संबंध में सारे समाज को सारे सृष्टि को देखने लगेंगे तो डेफिनेटली राग और द्वेष उसमें आएगा। कृष्ण के संबंध में सबको देखेंगे तो द्वेष नष्ट हो जाएगा, प्रेम प्रेम नहीं। प्रयास करना चाहिए, है ना, इस प्रकार से देखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि राग और द्वेष से दूर रहो। आध्यात्मिक जगत में विशेषकर सबका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग रहता है और विषयों के प्रति राग रहता है। इंद्रियों का ये विषय, इंद्रियों के जो विषय है, भोग के जो विषय है, इसके प्रति राग रहता है परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका अनुराग रहता है। शुद्ध आसक्ति, शुद्ध अटैचमेंट, प्योर अटैचमेंट, निस्वार्थ आसक्ति, निस्वार्थ अटैचमेंट, कॉसलेस, कोई कारण नहीं, एकदम बस कृष्ण से ऐसा आसक्त हो, अनुराग है, प्रेम है। भले ही इंद्रियों को किसी विषयों के प्रति, किसी भोगों के प्रति थोड़ी आसक्ति होगी परंतु द्वेष नहीं होगा। क्यों ऐसे होगा, कि कृष्ण के प्रति अनुराग है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
परंतु भौतिक जगत में कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं होने के कारण इंद्रिया विषयों के प्रति राग द्वेष करते रहती है और उसमें फंस जाती है। भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का सबसे बड़ा यह अंतर है। भौतिक जगत में भगवान के प्रति अनुराग नहीं होता है और इंद्रिय विषयों के प्रति व्यक्ति का राग और द्वेष होता है और इसी के कारण व्यक्ति कर्मों के वश में या राग और द्वेष के वश में बने बना रहता है। राग और द्वेष के वश में बना रहता है अर्थात कर्मों के वश में, कर्म बंधन में फंसा रहता है। क्यों, क्योंकि जो कुछ कर्म वो करता है वो राग और द्वेष के आधार में करता है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसा करता हूं, मुझे बुरा लगता है इसलिए मैं वैसा करता नहीं, अर्थात मेरे सारे कर्म जो है वो राग और द्वेष के आधार पे ही हो रहे हैं। परंतु आध्यात्मिक जगत में भी लोग कर्म करते हैं परंतु आधार क्या है, अनुराग, कृष्ण प्रति, कृष्ण के प्रति अनुराग। और यहां पे क्या होता है, भक्ति जगत में विषयों के प्रति अनुराग कृष्ण को दूर करने के कारण हमारे अंदर राग और द्वेष की प्रवृत्तियां प्रबलता से आ जाती है कि नहीं। आप देखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, ये सब एक्सपेरिमेंट करने वाली बात है। भगवान से जितना दूर जाएंगे उतना जीवन शुरू
शुरुआत में तो ठीक लगेगा लेकिन नीरस होते जाएगा, उत्तर उत्तर जीवन नीरस होते जाएगा, उदासीन होते जाएगा, उदासीन होते जाएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ताप हमको प्रताड़ित करते रहेगा। कृष्ण को निकट रखो, कृष्ण से अनुराग रखो, इवन उत्तरोत्तर जैसा जीवन आगे बढ़ता है जीवन में उत्साह रस आनंद का अनुभव होते जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब भक्त की क्या विशेषता, कैसे रहे कृष्ण कॉन्शियस, कौन ही व्यक्ति राग और द्वेष के अधीन नहीं होता है, जो भक्त होता है, जो कृष्ण के प्रति अनुराग जिसका है, जो अनुरागी है, वो राग और द्वेष के वश में नहीं आता है। तो क्या होता है राग के वश में कैसे नहीं आता है? राग तो पांच प्रकार की राग और पांच प्रकार के द्वेष है जो हमने अभी चर्चा की है ना, पंचेंद्रिय से संबंधित जो भी है वो राग और द्वेष है, पांच ही प्रकार है श्रवण। तो भक्त जो होते हैं कृष्ण कॉन्शियस जो होते हैं कृष्ण में कृष्ण के अनुरागी जो होते हैं उनमें श्रवण अर्थात कान अर्थात ध्वनि के प्रति कोई राग नहीं होता है। राग के वश में नहीं रहते हैं, वो मधुर संगीत भी नहीं सुनते हैं, सुनते हैं बहुत जो अच्छे उच्च कोटि के भक्त हैं उनको आप कहेंगे क्या इतना सुंदर म्यूजिक कंसर्ट संगीत का संगीत प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, भारत की या विश्व विख्यात गायिका और गायक आपको वीआईपी पास देते हैं जाएंगे जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं मधुर है। देखिए कभी कभी ये मधुरता भी हमको बंधन में डाल देती है। अब मधुरता कैसे बंधन में डाल देती, मान लो बहुत ही अच्छा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, कोई बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, कान को तो इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। लेकिन उस दौरान जो दो घंटे का तीन घंटे का जो संगीत कार्यक्रम होगा उस दो तीन घंटे के दौरान वो श्रवणेन्द्रिय इतनी इंजॉय करती राग इतना प्रिय ध्वनि वह लगता है कि पूरी तरह से कृष्ण को भूल जाते हैं। वो तीन घंटा कृष्ण का स्मरण बिल्कुल नहीं। इसलिए जो कृष्ण कॉन्शियस होते हैं वो इस प्रकार के मधुर ध्वनि के प्रति भी आकर्षित नहीं होते, जो अनुरागी भक्त होते हैं वो इस प्रकार से मधुर संगीत की ओर भी आकर्षित नहीं होते। आप सोचेंगे कर्कश जो होता है उसके प्रति द्वेष होना ठीक बात है परंतु मधुरता के प्रति भी राग नहीं होता है, हाँ कमाल की बात है भी स्वीट म्यूजिक सुंदर मधुर संगीत परंतु उसके प्रति भी राग नहीं, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से दूर है। ये विशेषता होती है अनुरागी व्यक्ति की। इवन कोई अच्छी लगने वाली बात भी है तो वो नहीं करते हैं, बुरी लगने वाली बात का तो द्वेष वो बात की बात है परंतु अच्छे लगने वाले विषय को भी वो एंजॉय नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको यह लगता है उतना समय में कृष्ण को भूल जाऊंगा और कृष्ण को भूलते से ही तुरंत मन में राग और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। दुनिया का कितना तानसेन भी आके गाए हमारे सामने तो भी वो हमारे अंदर के राग और द्वेष को नहीं मिटा सकते, मिटाने वाले केवल भगवान, और उन्हीं से हम दूर चले जाते हैं। इसलिए कोई भक्तों का आप ये सोच सकते हैं, उच्च से उच्च कोटि की जो अनुरागी जो भक्त है, वो यदि कोई भक्त कोई व्यक्ति हमको प्रभावित करने के लिए या भक्तों को प्रभावित करने के लिए कीर्तन भी कर रहा हो, मानो कीर्तन कर रहा है, किस लिए प्रभावित करने के लिए यदि कीर्तन कर रहा हो, तो वो अनुरागी भक्त वो कीर्तन भी नहीं सुनते। भगवान क्या करते होंगे उनकी बात छोड़ दी। जो अनुरागी भक्त है, यदि उनको पता चला कि आप बहुत सुंदर गा रहे हो, लेकिन वो गाने वाले जो गायक है वो किसी को प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छा ताल लेने के सुर लेने के गा रहे हैं, तो वो भक्त उसका कीर्तन नहीं सुनता। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का अंतिम समय था उनका इस धराधाम का, इस पृथ्वी पर का अंतिम समय पे वो कीर्तन करती है। एक भक्त कीर्तन कर रहे थे, बहुत ही सुंदर। परंतु उस भक्त के मन में ये भाव था कि जो भक्त बहुत सारे लोग बैठे हैं, इनको कैसे प्रभावित करें, अच्छे से अच्छा गाएं, एकदम अलाप करके इनको कैसे प्रभावित करें, जो सब बैठे हैं इनको, ये उद्देश्य से वो भक्त गा रहे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने तुरंत उनको रुकवाया, बंद करो कीर्तन, नहीं चाहिए। ये भक्त का अनुराग होता है, इवन अच्छा भी लगता है ना तो भी उसको नहीं मानते हैं, वो उसका स्वीकार नहीं करते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के लिए नहीं हो रहे। और त्वचा स्पर्श के प्रति राग, वो ऐसे स्पर्श को त्याग देते हैं जिसके कारण भगवान कृष्ण को भूल जाए। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज रात भर जप करते थे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे तूफान आए कुछ भी हो जाए, हरे कृष्ण माला तुलसी माला लेके हरे कृष्ण जप रात भर बिना कुछ ओढ़े गंगा के तट पे। सोचिए कितनी ठंडी होती है, रात भर ठंड में रात को उनको कहते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। एक अच्छे इंसान थे, सदगृहस्थ, उन्होंने देख लिया बाबा जी महाराज को, गौर किशोर दास जी महाराज को, उनको लगा इतने बड़े उच्च कोटि के संत महापुरुष छोटी पौरा हुए जब इतनी ठंडी है, ठंडी से एकदम हिल गए। उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन ऐसे रात में अच्छा बढ़िया मोटा सुंदर ब्लैंकेट उलन का लेके गए और बड़े प्रेम से नम्र भाव से उनको दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे बाबा जी महाराज कृपा करके इसका स्वीकार कीजिए, बहुत रिक्वेस्ट। और बाबा जी महाराज ने स्वीकार किया, ठीक है भक्त की इच्छा है तो चलो कोई बात नहीं, स्वीकार किया। और उस रात को उन्होंने उसको ओढ़ा, स्पर्श अच्छा लगा ब्लैंकेट का, ऐसी गहरी नींद आ गई कि भगवान के नाम का विस्मरण हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुरंत दूसरे दिन गौर किशोर दास जी बाबा जी महाराज ने क्या किया, वो की ब्लैंकेट को विसर्जित कर दिया, क्योंकि इसके कारण कृष्ण को भूल गया, कृष्ण नाम से भूल गया। सो स्पर्श यदि बहुत अच्छा है परंतु कृष्ण से हमको दूर ले जा रहा है तो उसका त्याग अनुरागी भक्त का, इसलिए बंधन में नहीं फंसते राम और द्वेष के। नेत्र का भी ऐसा ही है, जो कृष्ण लीला से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण के कृष्ण से हमको दूर ले जाने वाले ऐसे जो भी कुछ सीन सीनरीज है उन सब से भक्तगण दूर रहते हैं। इसका अर्थ क्या है, हिमालय में जाके रहे हिमालय में जाकर रहना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि किसी भी बाह्य घटना से उतने प्रभावित न हो कि तुरंत नाम भूल जाए, तुरंत कृष्ण को भूल जाए, इतने प्रभावित न हो। इसका अर्थ यह नहीं कि आग पे ऐसा झापड़ लगा के चलिए, ऐसा अर्थ नहीं होता। संसार को देखिए, संसार के संपर्क में सबका संपर्क होगा परंतु उससे प्रभावित न हो। जीवा का भी ऐसा ही है, जो भक्तगण होते हैं वो क्या करते हैं, राग के बंधन में नहीं फंसने के लिए केवल कृष्ण प्रसाद ही खाते हैं। कृष्ण को अर्पण किया गया है वही खाते हैं, तो कृष्ण को भोग नहीं लगाया है उसको नहीं खाते। गंध के प्रति भी ऐसा ही है, जो कृष्ण से सुगंध नहीं आता है, अर्थात जो इंद्रिय तृप्ति के लिए सुगंध है, जो कृष्ण को हमको भुला देता है, ऐसे सुगंध से दूर। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम।
अभी ये तो राग की बातें की है, जो अच्छा लगता है,
जो अच्छा लगता है वो भी हमको बंधन में डालता है ना,
तो इससे भक्तगण कैसे दूर रहते हैं हमने चर्चा की है। अब जो बुरा लगता है द्वेष, ये भी तो बंधन में डालता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं द्वेष से? पहले तो राग से कैसे बच सकते हैं, अब द्वेष से कैसे बच सकते हैं? तो कान, फिर से श्रवण, शब्द, ध्वनि, द्वेष उत्पन्न करने वाले भी ध्वनि होते हैं। भक्तगण ऐसे ध्वनि को भी सुनते हैं जो एकदम कर्कश है, अच्छा नहीं है बिल्कुल,
परंतु उसमें कृष्ण के नाम और गुणों को अंकित किया गया है, एकदम भयानक ध्वनि, परंतु कृष्ण के नाम और गुणों को अंकित किया गया है।
जैसे बिटल बैंड्स, जॉर्ज हैरिसन 1890s में कुछ थे, उन्होंने वर्ल्ड के विश्व विख्यात, पूरे विश्व के विख्यात पॉप सिंगर थे ना, है ना, रॉकस्टार थे, रॉकस्टार, और ऐसे ही गाने गाते थे रॉक। प्रभुपाद जी को जब उनका प्रथम बार प्रभुपाद जी का उनको दर्शन हुआ, पहले ही समय जैसे प्रभुपाद जी के साथ उनकी चर्चा हुई, इतने प्रभावित हुए कि अपने जो गुण हैं वो गुणों की जो दिशा थी, रॉक स्टार जो यहां वहां भटक रहे थे, वो सारे एकत्रित हो कृष्ण की ओर जाने। अभी तक तो उनके बहुत विचित्र विचित्र एल्बम चल रहे थे, परंतु जिस समय प्रभुपाद जी की कृपा हुई, उपलब्धि हुई, तो वही रॉक स्टार वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाने लगे। लेकिन कौन सा गाना गाए? माय स्वीट लॉर्ड, उनका एक एल्बम आया उस दशक में, जिसका नाम है माय स्वीट लॉर्ड, और वो पूरे विश्व में वो रॉक के स्टाइल में गाते, उन्होंने वो माय स्वीट लॉर्ड पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया, अर्थात उन्होंने वो पॉप वो रॉक स्टाइल में गाके कृष्ण के नाम और गुणों को सारे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। तो भक्तगण जो होते हैं उनको कदापि राग वगैरह, ये रॉक वगैरह, पॉप रॉक, ये सब कदापि पसंद नहीं है, परंतु उसमें यदि कृष्ण के गुण अंकित है, नाम अंकित है, क्या हो जाता है उसको सुन ले। द्वेष वाली बात है परंतु कृष्ण से कनेक्ट कर रही है, राग वाली बात है लेकिन कृष्ण से दूर ले जा रही है तो उसका त्याग कर देते, द्वेष वाली बात है परंतु कृष्ण से कनेक्ट कर रही तो उसका, मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसी कोई प्रिय बात है जो अच्छी लगने वाली बात है परंतु कृष्ण से दूर ले जाती है तो उसका वो त्याग कर दे। एकदम बुरी बात है लेकिन वो कृष्ण से कनेक्ट कर रही है तो उसको वो अटेंड नहीं करते। ये भक्तों की विशेषता होती है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है, पहले स्कंध में पांचवें अध्याय में लिखा गया है, ऐसी वाणी जिसमें अनंत भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को अंकित किया गया है उस वाणी का उस वो वाणी समस्त संसार को पवित्र करती है, ऐसा कहा गया श्रीमद् भागवतम, समस्त संसार को पवित्र करती है। दूसरा त्वचा स्पर्श के प्रति द्वेष, पहले हमने स्पर्श के प्रति राग की चर्चा की जो भगवान के प्रति हमारे अंदर विस्मरण उत्पन्न करता है, अब ये क्या है द्वेष, अर्थात ऐसा स्पर्श जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भक्तगण ऐसा भी स्पर्श स्वीकार करते जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्यों? संबंध को प्रस्तावित करता है। उदाहरण हम सब के लिए बहुत अच्छा उदाहरण, सुबह सुबह उठ के स्नान करना है, पानी का स्पर्श सुबह 5:30 साढ़े 4 बजे प्रिय है सबको, क्या इतने सुबह क्या नियम बना दिया है सब, क्यों किया है सर? वैसे द्वेष अच्छा नहीं, उसमें भी ठंडी के दिनों में, अभी ठंडी के दिन आने वाले, 4:30 बजे स्नान करना है मानो ठंडे पानी से, कितना खराब बात है। परंतु जो अनुरागी भक्त होते हैं वो सोचते ऐसा करने से कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाएगा तो वो वैसा भी कर लेते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नीत द्वेष, अर्थात जो देखना नहीं चाहते एकदम खराब रूप है, कौन देखना चाहेगा खराब रूप, कोई देखना चाहेगा? नहीं देखना चाहेगा खराब रूप, द्वेष नहीं देखना चाहिए। परंतु जो कृष्णवांशियस होते हैं, अनुरागी भक्त होते हैं, वो यदि कृष्ण का अनुराग उसे प्राप्त होता है तो ऐसे खराब दृश्य को भी देखते हैं उसका स्वीकार। उदाहरण माधवेंद्रपुरी और ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी पाद का अंतिम समय जब था उनकी बहुत ही दशा शारीरिक क्षीण हो गई, इतने क्षीण हो गए थे कि वो शैया पे लेटे रहते थे 24 आवर्स, हिल भी नहीं सकते थे, वही पे मलमूत्र त्याग करते थे उसी जगह पे। लेकिन उनके जो शिष्य थे ईश्वरपुरी, ये सब दृश्य को देख के उनके मन में द्वेष नहीं होता था, इतना आपको तो सब मलमूत्र वहीं पे है, सब इतना अशुद्ध है, लेकिन ऐसा उनके मन में कभी नहीं होता, रोज सुबह शाम उस मल को वो देखते थे, उसको स्वच्छ करते थे, उनकी सेवा करते थे, माधवेंद्रपुरी की ईश्वरपुरी। वो रूप को देखकर द्वेष उनके मन में नहीं, भौतिक संसारिक जगत की बहुत बुरी बातें हैं, आजकल इसका बहुत ही प्रचार प्रसार धूमधाम से हो रहा है, युवा अवस्था में जो लोग हैं उन्हीं के प्रति सब लोग आकर्षित हैं, उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं का महत्व है, उन्हीं को प्राधान्य है, उन्हीं की ओर देखते हैं। वृद्धावस्था में जो गए उनकी ओर कोई देखता नहीं, द्वेष है। इस संसार का सबसे बड़ा दुख ये है, अर्जुन ने पहले ही अध्याय में कहा था, ये प्रश्न उपस्थित किया था कि बड़े वृद्धावस्था में जो लोग है, सीनियर्स जो है, उनकी ओर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो जूनियर्स है, जो युवावस्था के जो लोग हैं, इनको मार्गदर्शन कौन करेगा, इनको संस्कार कौन देगा, इनको अनुभव अनुभूतियां कौन बताएगा? परंतु यह बहुत दुर्दशा है हमारे इस युग की। इस प्रकार से नेत्र माधवेंद्रपुरी बात की सेवा ईश्वर बहुत ही प्रेम से वो सब सबको देखते थे, उसे मल को अंततः उनको पुरस्कार मिल गया। क्या पुरस्कार प्राप्त हुआ उनको? भगवान स्वयं उनके शिष्य बन के आ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी बात के शिष्य, भगवान स्वयं उनको उनके पास घेर पे कृपा करके मेरा शिष्य के रूप में स्वीकार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जीवा। कहा जाता है रस के प्रति द्वेष, रुचि के प्रति द्वेष, करेला दिया क्या है बेकार दे दिया, द्वेष करेले के प्रति क्या खराब दे दिया। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को आज्ञा की कि तुम यदि आपको वैराग्य प्राप्त करना है तो वैराग्य का अभ्यास करना होगा, और वैराग्य का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम अन्न जो ग्रहण करते हैं प्रसाद, वो अन्न उच्च कोटि के अन्न का त्याग करो, निम्न स्तर का अन्न प्राप्त करो। जैसा ये आज्ञा रघुनाथ दास गोस्वामी को हुई चैतन्य महाप्रभु से, स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी जी चले गए जगन्नाथपुरी में तो थे मंदिर के पास चले गए, और उस मंदिर में जो चावल बनते हैं वो चावल को जो धो देते हैं तो धोए हुए चावल जो नाली में से गटर में से बह के जाते हैं, उन चावल को एकत्रित करके रघुनाथ दास गोस्वामी खा गए। द्वेष वाली बात है, जीवा रस स्वाद द्वेष, परंतु उसने उनको क्या दिख रहा है? वो देख रहे कि ये तो मुझे कृष्ण से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि कृष्ण ने कहा वैराग्य चाहिए, वैराग्य के लिए ये प्रैक्टिस यहां से शुरुआत करो। जब चैतन्य महाप्रभु भगवान साक्षात उनको पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी ये सब खा रहे हैं, वो भागते दौड़ते उनके पास गए रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, और उनके हाथ से वो लेके वो स्वयं भी खाने लगे। रघुनाथ दास गोस्वामी का वो भाव देखा, और वही रघुनाथ दास गोस्वामी को आगे वृंदावन में राधापुर में अनेक लीलाएं भगवान ने अनेक अपने लीलाओं में उनको सम्मिलित किया, राधा रानी ने उनको अनेक साक्षात्कार दिए है ना। अब समय नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गंध नासिका, दुर्गंध यदि होता है तो द्वेष उत्पन्न होता है ना, दुर्गंध किसी को अच्छा लगता, द्वेष उत्पन्न होते हैं। परंतु भक्त जो होते हैं वो देखते ही दुर्गंध में यदि भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है तो दुर्गंध को भी स्वीकार करते हैं, दुर्गंध को भी वो स्वीकार करते हैं। उदाहरण गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को मिलने के लिए बहुत सारे भौतिकवादी लोग आया करते थे, भौतिक इच्छाओं को लेकर उनकी साधना में उनको बड़ा डिस्टर्ब हो गया, जब तक मैं बहुत डिस्टर्ब हो, वो इतने त्रस्त हो गए थे इन मटेरियलिस्टिक विचारों से, भौतिकवादी विचारों से, इन लोगों से, ऐसे से मेरा जब कैसा होगा, ये लोग रोज इतनी बार आते हैं मेरा जब कैसे होगा, ये इसके कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे सोचा ऐसी जगह जाकर बैठूंगा जहां ये लोग आ ही नहीं सकते। वो कहां गए, वो ऐसी जगह जाके जप करने लगे जहां पूरे गांव के लोग अपना मल त्याग करते हैं नदी किनारे, उस जगह जाके 6 महीने तक वहां बैठ के उन्होंने जप किया। दुर्गंध है, द्वेष है, परंतु इनके ऊपर इनको तो उससे कृष्ण का अनुराग मिला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। साधारण यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि राग और द्वेष इन कंडीशंस में हमको हम अपने आप को न डालें, क्योंकि ये बंधन में डालने वाली है। हमको अपने आप को कौन से कंडीशन में डालना है? हमको अपने आप को
अनुराग, कृष्ण के प्रति प्रेम अनुराग, इस कंडीशन में केवल डालना है। इसमें एक शब्द आता है परिपंथी, परि अर्थात चारों ओर से बांधा हुआ, पंथी अर्थात यात्री गुरु, ऐसा यात्री जो चारों ओर से बंधन में फंसा गया है। इसका अर्थ यह होता है जीवात्मा रूपी यात्री को कर्म बंधन से बांधने वाली। तो जीवात्मा तो यात्री है ना, ये शरीर से वो शरीर में जा रहा है, ये जीवात्मा रूपी यात्री को ये राग और द्वेष कर्म बंधन में डाल रहे। दूसरे शब्दों में शास्त्र में कई बार कहा गया है कि ये जीवात्मा रूपी यात्री संसार रूपी जंगल में भटक रहा है, उसको दिशा नहीं मिल रही है, बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है इस जंगल से बाहर निकलने का, लेकिन उस जंगल से बाहर निकलने का उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है। ये जीवात्मा इस जंगल में भटकता है, भटकता है, भटकता है, और इस जंगल में ये राग और द्वेष रूपी भयंकर खूंखार डाकू बैठे हुए हैं। ये डाकू क्या करते हैं, इस जीवात्मा को पकड़ते हैं, उसको लूटते हैं। क्या लूटते हैं इसका, ये राग और द्वेष जीवात्मा का ज्ञान लूट लेते हैं। दिव्य ज्ञान उसके पास जितना भी है वो ये राग और द्वेष उससे लूट लेते हैं, और वो इस संसार की घने जंगल से कभी भी बाहर नहीं आता है, बल्कि उस अंधकार में, उस अज्ञान में पड़ा रहता है। इसलिए भगवान बड़े ही उत्कट भाव से कह रहे हैं कि राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष के कारण ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए वो कहते कि हे अर्जुन, तुम विचार करो कि तुम यह युद्ध कहीं राग और द्वेष के कारण
तो नहीं छोड़ रहे हो,
विचार करो इस बात पे अर्जुन, क्या तुम ये युद्ध छोड़ने की जो बात कर रहे हो उसका आधार राग और द्वेष तो नहीं, क्योंकि ये राग और द्वेष मनुष्य के पास जो भी दिव्य ज्ञान है उसको चुरा लेते हैं और कर्म बंधन में डाल देते हैं, जिसके बाहर हम निकल ही नहीं सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, श्रील प्रभुपाद की।